त्रिलोक सार लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्चायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, बलगोविंदसिहामणि किरणकलावरुणचरणनः किरणं विमलयरणेमिचन्दं त्रिभुवनचन्दं नमंसामि। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती रचित यह गोमटसार नामक ग्रंथ है और उसकी हिंदी टीका हम पढ़ रहे हैं। त्रिलोकसार, मैंने क्या बताया, गोमटसार, ओहो त्रिलोकसार की रचना है ये। हम आए हैं 45 पृष्ठ पर। कल हमने 41 से लेकर 45 तक की गाथाएं पढ़ी थी और उस गाथा का अर्थ भी देखा था। देखो, अपना विषय तो ये संख्या मान, उपमा मान आदि संबंधी चल रहा है। पहले जो संख्या मान संख्यात के भेद हम देख रहे थे, तो मूल भेद है संख्यात, असंख्यात और अनंत। असंख्यात के भी तीन भेद है, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। अनंत के भी ऐसे तीन भेद है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। हमने वो जघन्य परिता संख्यात की बात देखना शुरू की थी। उसमें वो चार कुंड आदि जो बनाए थे, अनवस्था, बढ़ते हुए अनवस्था कुंड वगैरह, वो पूरा हमने विस्तार से देखा था। तो हमें जघन्य परिता संख्यात का प्रमाण मिला। तो जघन्य परिता संख्यात प्रमाण एक 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 लिख कर हर एक के ऊपर जगत्यम परिता संख्यात लिखो और आपस में गुणा करो तो जघन्य युक्ता संख्यात की संख्या आती है। जघन्य युक्ता संख्यात को एक बार जघन्य युक्ता संख्यात से गुणा करेंगे तो जघन्य असंख्याता संख्यात आती है। अब उसके जो आगे के एक एक से बढ़ते हुए सारे मध्य भेद होते हैं असंख्याता संख्यात के, तो वहां अभी हमें जघन्य परितानंत क्या है उसको हम देखने जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने दो तीन चीजें बताई कि ये शलाका स्थापित करना, शलाका त्रय वो क्या होती है बात, उसको हमने कल पढ़ा था कि ये जो जघन्य असंख्याता संख्यात है संख्या, अब उस प्रमाण तीन राशि करना। एक को कहेंगे शलाका राशि, एक को कहेंगे विरलन राशि और एक होगी देय राशि। देखो, यहाँ शलाका राशि तो कांस्टेंट रहेगी और विरलन और देय राशि बढ़ती चली जाएगी। पहले तीन तो समान राशि थी, शलाका राशि घटती चली जाएगी परंतु वो मूल वो उतनी राशि और आगे की राशियां बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि हम कितनी बार गुणकार करते हैं, वो प्रोसेस जिसको कहेंगे संवर्ग करना। तो जो विरलन राशि होती है उसको एक एक में बिखेर देना, जो स्टार्टिंग में जघन्य युक्त असंख्याता संख्यात है, उसके बाद हर एक के ऊपर वही संख्या रखना और आपस में गुणा करना। ये पहली बार उसका संवर्ग हुआ, पहली बार गुणकार हुआ, ये गुणाकार का प्रोसेस एक बार हुआ तो शलाका राशि में से एक माइनस कर देना। और ये जो वर्गित कर पर जो संख्या आएगी, अब उसको विरलन बनाना, उसी को देय बनाना। जो महाराशि उत्पन्न हुई गुणकार से, ये दूसरी बार हुआ ना गुणाकार, तो शलाका राशि में से और एक माइनस कर देना। यानी ऐसे गुणाकार भी कितनी बार हो गए, जघन्य असंख्याता संख्यात बार। तो जो कोई महाराशि उत्पन्न हुई, ये तो शलाका समाप्त हुई क्योंकि उसमें से एक एक बार जब जब हमने वो संवर्गित किया है तब तक एक एक बार उसमें से माइनस कर दिया था। तो जब वो राशि समाप्त हो जाती है तो क्या करना, वहां जो महाराशि उत्पन्न हुई है उस प्रमाण फिर तीन राशि करना, महाराशि प्रमाण।
अच्छा,
शलाका राशि भी महाराशि प्रमाण। ये पढ़ना, देखो ये क्या कहा, आपको जो शंका है ना कि शलाका राशि उतनी है कि महाराशि, तो महाराशि प्रमाण शलाका है। देखो पेज नंबर 43 पेज पर, यहाँ जो ऊपर से जो एक चार चार आठ लाइन में लिखा ना, एक बार शलाका राशि समाप्त तो हुई मिला, ब्रैकेट में लिखा है सेंटर में, उसके नीचे के लाइन में क्या लिखा है, प्रथम शलाका राशि के समाप्त होने पर जो महाराशि उत्पन्न हो उसे पुनः पूर्वोक्त प्रकार से शलाका विरलन एवं देह रूप से स्थापन करना। यानी पहली बार शलाका समाप्त होती है तो वहाँ जो कोई गुणाकार करके जो संख्या आएगी उसको शलाका बनाना, उसी को उस समय विरलन और उसी को देय, और वही प्रोसेस चलेगा। फिर एक एक बार वो प्रोसेस हो जाएगा तो जाके शलाका में से एक माइनस करो। अब शलाका भी राशि कितनी बड़ी असंख्यात संख्यात आ गई है, अब वो समाप्त होने तक एक प्रकरण चलेगा। दूसरी बार की शलाका राशि समाप्त होने तक हर बार वही जो जो राशि उत्पन्न होती है उसको विरलन देय करो, उसका गुणाकार करो। जब वो शलाका राशि समाप्त होती है तब जो महाराशि उत्पन्न होती है उतना ही फिर शलाका विरलन और देय करना। ये तीसरी बार शलाका राशि स्थापित की है, वही प्रोसेस चलेगा, क्योंकि आगे आगे कितनी बड़े बड़े राशि हो रही है तो उसके वर्ग कितने, यानी उसके जो गुणाकार है वो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। तो तीन बार जब वह शलाका राशि समाप्त होती है वहां जो कोई अंतिम जो शलाका त्रय स्थापित करके जो संख्या आएगी मध्यम असंख्यात संख्या, अभी उसमें छह राशियां मिलानी जो असंख्यात संख्या वाली। हाँ, अभी असंख्यात संख्या थी, मध्यम असंख्यात संख्या थी। हाँ, ये लोग से छोटा होना चाहिए, आपका कहना ये लोग से छोटा होगा कि नहीं होगा? लोग भी
लोग से कम होगा,
लोग तो घनाघन धारा में आता है वैसे, फिर भी वो बहुत आगे स्थान जाके आता है ना, बड़ी संख्या है उसकी। यानी जगत श्रेणी इस लाइन में या द्विरूप वर्ग धारा में जगत श्रेणी आएगी नहीं, जगत श्रेणी भी नहीं आएगी, जगत श्रेणी विरूप घन में आती है ना, और घना घन में लोक आता है कि नहीं?
आप तो ऐसे बताए तो जगत श्रेणी और जगत प्रतल विरूप वर्ग का धारा है, और
जगत घन
घन घन
विरूप घन धारा में
घन धारा।
बराबर है, जगत श्रेणी द्विरूप वर्ग धारा में ही आनी चाहिए। इसमें भी आने वाली होगी बात, ये पहले देख लेते हैं। आपको याद है, मुझे भी याद भी नहीं। हाँ, घन धारा में ना। हाँ, अपनी पुस्तक निकालो 62, मुझे ऐसा ही लगता था। देखो इसमें जगत श्रेणी का प्रथम घनमूल आता है, पेज नंबर 62 मुझे, आपने कौन सा बताया, 62 ही बताया, वही ऊपर गाथार्थ है ना, प्रतरावली। प्रतरावली का अर्थ होता है जगन्य असंख्यात असंख्यात, उसके असंख्यात स्थान आगे जाकर अद्धा पल्ल्य की वर्गशला का, फिर अर्धच्छेद प्रथम मूल, आगे पल्ल्य सूचंगुल प्रतरांगुल, और जगत श्रेणी का प्रथम घनमूल प्राप्त होता है। ये घनमूल इसमें है, फिर जगत श्रेणी है द्विरूप घन धारा में, नीचे नोट में जगत श्रेणी घन धारा में है, द्विरूप वर्ग धारा में नहीं। और लोग जो है जगत श्रेणी का घन वो घना घन धारा में है,
घन का घन।
हाँ ऐसे मुझे याद था, आपने बोलने पर मुझे जरा कंफर्म करने
की। मेरे को इसे याद नहीं।
नहीं नहीं नहीं,
दो दिन पहले कुछ बात
ही नहीं, दो दिन उसकी बात नहीं आई थी। जगत श्रेणी इसमें नहीं आता है, वो पल्लव ये सूचंगुल आता है, उसका घनांगुल आता है उसमें। देखो अभी हम इसको रिवाइज कर रहे थे, तीन बार शलाकात्रय हुआ। शलाकात्रय के बाद क्या करना है, अभी जो महाराशि उत्पन्न हुई उसमें छह राशि और मिलाना। वो छह राशियां कौन कौन सी है, तो लोक प्रमाण असंख्यात संख्या वाली चार राशियां है, धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश और लोकाकाश के प्रदेश। ये कहने के लिए हम अलग अलग कहेंगे, एक ही संख्या है, चार बार उसी को मिलाना है। फिर जो प्रत्येक वनस्पति उसके दो भेद है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और प्रतिष्ठित प्रत्येक। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक कितने, तो असंख्यात लोक प्रमाण राशि है और उससे असंख्यात गुणा प्रतिष्ठित प्रत्येक है, तो वो दोनों राशि मिला। ये टोटल छह राशि मिलाना, पहली महाराशि में ये छह राशि मिलाने पर जो संख्या आएगी, अब उसके फिर शलाकात्रय स्थापित करना। यानी जब तीन बार शलाकात्रय उसका होगा तो और कितनी बड़ी महाराशि आएगी। अब फिर भी रुकना नहीं, उस महाराशि में चार राशियां और मिलाना। उसमें क्या है, एक कल्पकाल के जितने समय है उसको मिलाना, यानी जिसको हम कहें ना 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय है, समयों में ट्रांसफर करना, पल्लों में नहीं। एक सागर के 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं और यहाँ पूरा कल्पकाल है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो 20 कोड़ा कोड़ी इंटू 10 कोड़ा कोड़ी 200 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो गए। अब ये तो आधा पल्ले का प्रमाण है, उसमें कितने कितने समय हो गए, तो वो सारे इसमें मिला देने। फिर स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान, जो कल्पकाल के समयों से असंख्यात लोक गुणे हैं, खाली असंख्यात गुणे नहीं, असंख्यात लोक गुणे हैं, उसको भी इसमें मिला देना। अब अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, जो स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान से असंख्यात गुणे, वैसे तो वो भी असंख्यात लोक गुणे ही है, क्योंकि हम जब कहते हैं स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कितने, तो असंख्यात लोक, और अनुभाग अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक गुणा असंख्यात लोक। अब चार नंबर पर योग के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद। देखो योग स्थान अलग बात है और उसके अविभाग प्रतिच्छेद बात अलग है। जो अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान से असंख्यात गुणे हैं, ये चार राशियां दूसरा प्रक्षेप है। प्रक्षेप है नहीं, उसमें दूसरी बार हमने उसमें मिला दिया। पहली बार मिलाया था 45 पेज पर, जो कल की बात हम पढ़ रहे, तो ये पहले तो छह राशि मिलाई थी, जो छह राशि मिलाने पर जो संख्या आई उसको तीन बार शलाकात्रय किए, उसके बाद जो राशि आई उसमें चार राशि ये और मिलाई, असंख्यात लोक और असंख्यात लोक गुणा। तो ये करने पर जो महाराशि होगी, फिर उसके शलाका विरलन दे करके उसका भी शलाकात्रय कर देना, निष्ठापन करना। जो अंतिम प्रक्रिया पर जो राशि आ जाएगी वह है जघन्य परितानंत। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था और उसी को फिर हमने दोबारा याद किया, क्या क्या पढ़ा था उसको। अब यहाँ 46 और 47 नंबर की गाथा पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, जघन्य परितानंत में से एक अंक घटाने पर क्या मिलेगा, उत्कृष्ट असंख्याता संख्या।
एक सागर में जो 10 कोड़ा कोड़ी पद्य है कि
आपका प्रश्न है, एक सागर में जो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले है वो उद्धार पल्ले के अद्धा पल्ले है। जब हम अद्धा सागर कहेंगे तो अद्धा पल्ले है, जो उद्धार सागर कहेंगे तो उद्धार पल्ले है, व्यवहार सागर कहेंगे तो व्यवहार पल्ले है। यानी 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर, ये तो यूनिट है। हाँ। फिक्स
नहीं, पर जो कल्पकाल में जो हम लोग सागर देखते
वो अद्धा है,
वो अद्धा सागर,
अद्धा सागर की बात है, तो अद्धा पल्ले होगा। एक कर्मों की स्थिति कहो या काल, ये जो है सारी जो है काल गिनते हैं हम, ये सब अद्धा सागरों में गिनते हैं। हाँ हाँ अध्या सागर है, कर्म की स्थिति, आयु का प्रमाण जो नारकी और देवों का है वो सब सागरों में जब कहते हैं, अध्या सागर की बात है वो। उद्धार सागरों में तो मात्र द्वीप और समुद्रों की संख्या गिनते हैं, और व्यवहार पल्ले में वो तो ठीक है रोम संख्या रोम खंड गिनते हैं केवल। यानी वो तो केवल वहां संख्या गिनने का एक तरीका बताया वहां पर। अभी हम गाथा पढ़ेंगे 46-47 नंबर की। अवर परितम विरलिय दाऊणे दम परो परम गुणिदे अवरम जुत्तम अनंतम अभव सममेत्थरूणे ज्येष्ठ परितानंतम वग्गे गहिदे जहन्न युत्तस अवरमणन्तानन्तम् रूणे जुत्तनन्तवरम् अवरपरीतं विरलय दत्त्वा इदं परस्परं गुणिते अवरं युक्तमनन्तम् अभव्यसमम् अत्र रूपोने ज्येष्ठपरीतानन्तम् वर्गे गृहिते जघन्ययुक्तस्य अवरम् अनन्तानन्तम् रूपेने युक्तानन्तवरम्। वैसे इसका अर्थ भी सरल है। अवर का अर्थ होते हैं जघन्य और वर का अर्थ होता है उत्कृष्ट। हम तो जघन्य परितानंत तक आए थे। देखो ये संस्कृत श्लोक देखो, फिर हम नीचे जाएंगे। अवर परितम यानी जघन्य परितानंत का विरलन करके देने पर विरलय दत्वा और इदम परस्परम गुणित और उनका परस्पर में गुणाकार करने पर क्या मिलेगा? अवरम युक्तम अनंतम, जघन्य युक्तानंत मिल जाएगा। और क्या है उस समान? अभव्य समम। वो अभव्य समय ने अभव्य की राशि जघन्य युक्तानंत प्रमाण है। क्या हुआ? अत्र रूपे ने, अभी उसमें एक कम कर दो तो क्या मिलेगा? ज्येष्ठ परितानंतम, उत्कृष्ट परितानंत मिलता है। वर्गे गृहिते जघन्य युक्तस्य, अब ये जो जघन्य युक्तानंत है उसको उसका वर्ग करने पर क्या मिलेगा? अवरम अनंतानंतम, जघन्य अनंतानंत मिलता है। अवरम जघन्य रूपों ने एक संख्या रूप ऊन करने पर यानी एक कम करने पर युक्तानंतवरम उत्कृष्ट युक्तानंत मिलता है। अब नीचे पढ़ेंगे हम 14 नंबर। मध्यम परितानंत जघन्य परितानंत से एकादि अंक द्वारा वृद्धि को प्राप्त तथा उत्कृष्ट परितानंत से एक अंक हीन तक के जितने विकल्प है वे सब मध्यम परितानंत है। पहले भी एक एक शब्द आया था और उसमें हमने एक किया था, याद है? वहां तक की बात थी। बहुत पहले आई थी बात 34 मध्यम संख्या 34 पेज पर 2 नंबर का पॉइंट है ना बीच में मध्यम संख्या। अब ये यहाँ मध्यम परितानंत से कंपेयर करो। यहाँ क्या लिखा? तथा उत्कृष्ट परितानंत से एक अंक हीन तक के जितने विकल्प है। वहां ऐसा ही लिखा था, जघन्य संख्या से एकादि अंक द्वारा वृद्धि को प्राप्त तथा उत्कृष्ट संख्या से एक एक अंक हीन, नहीं मैंने एक निकालने को बोला था, एक अंक हीन तक के जितने विकल्प है। ख्याल में आई बात? पेज नंबर 34 2 नंबर का पॉइंट मध्यम संख्यात उसकी सेकंड लाइन से एक एक अंकहीन तक लिखा था ना, वो एक अंकहीन तक चाहिए था। आप कहाँ की बात निकाल रहे? राइट साइड में कहाँ है? अच्छा हाँ हाँ सॉरी हमारे आपके जो अलग अलग प्रिंट है दो बार एक हुआ है, मेरा एक ही लाइन में एक एक संख्या नहीं मिली, आप राइट साइड में का। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, ये अलग अलग समय में प्रिंट किया हुआ है तो उसमें उतना तो डिफरेंस ये अच्छा है कि पेज नंबर वही ये रखे, तभी अपनी चर्चा हुई थी ना एक एक है क्या एक है, तो उसका भी अपने को प्रूफ मिल गया यहाँ पर, अभी काट लिया, अच्छा किया हमने तभी काट के रखा था। ये मध्यम परितानंत हो गया, वे सब मध्यम परितानंत है, अपने पेज नंबर 45 लास्ट में 15 नंबर का पॉइंट है, उत्कृष्ट परितानंत जघन्य युक्तानंत में से एक अंक कम कर देने पर उत्कृष्ट परितानंत प्राप्त होता है। अब ये कैसा जघन्य युक्तानंत निकालना वो बात अब बताएंगे। 16 नंबर का पॉइंट, जघन्य युक्तानंत का स्वरूप, जो हमने 46-47 गाथाएं पढ़ी थी उसका अर्थ अब यहां दे रहे हैं। जघन्य परितानंत का विरलन कर, ये जघन्य परितानंत कैसे प्राप्त हुआ था याद है ना, वो शलाका से शलाकात्रे वो बहुत बार किया था वो, हाँ। तो जघन्य परितानंत का विरलन कर, प्रत्येक एक अंक पर जघन्य परितानंत ही देय देकर परस्पर गुणा करने से जो लब्ध प्राप्त हो उतनी संख्या प्रमाण जघन्य परितानंत, ये जग प अनंत। अच्छा अच्छा देखो यहाँ ऐसा ही किया उन्होंने, ब्रैकेट में रखा है और ये उनको ऊपर के लेवल में रखना था, जैसे पहले उन्होंने किया था रेस टू, ब्रैकेट में लिखकर जैसे हम घातांक ऊपर लिखते हैं ना, चार का वर्ग करने तो चार लिखते हैं और ऊपर कोने में उसको दो लिखते हैं, ऐसे उनको लिखना था, वो बराबर नहीं हुआ है, पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि एक लाइन पूरी छोड़कर उनको नीचे अगर लिखते तो बीच में एक लाइन में लिख सकते थे, मगर ये नहीं हुआ है, परंतु उसका अर्थ वह समझना। क्योंकि केवल ब्रैकेट में डालने से यह अर्थ नहीं घटित होता है, हाँ ये तो गुणा होता है, तो यहाँ ऐसा कर देना उसको जघन्य परितानंत रेस टू, और ये जघन्य परितानंत साइड में जो लिखा है ना वो ब्रैकेट के कोने में ऊपर लिखना चाहिए। दो नहीं, जघन्य परितानंत ब्रैकेट के ऊपर कहाँ लिखा है, बाजू में लिखा है, बराबर ऐसा ही करना है। बाजू में लिखेंगे तो गुणाकार हो जाता है, ये हमने कल लिखा था ना ऐसा, ये ऐसा कल लिखा था जपर एस टू जपो, वो हमने असंख्यात के लिए लिखा था, अब यहाँ जघन्य परिता अनंत करो, जप अनंत लिखो और उसके ऊपर जप अनंत लिखो तो हो जाएगा, ये ब्रैकेट के साइड में लिखेंगे तो गुणकार होता है, एक बार ही गुणा हो जाएगा वर्ग होगा, और ये उसके इधर लिखना है, दो लिखेंगे तो दो बार गुणा, यानी दो का उनका दो बार लिख के गुणाकार नहीं करना, उनको उतनी ही बार लिख के गुणाकार करना है। देखो फिर से समझो, मल्टीप्लाई नहीं, रेस टू लिखना है, मल्टीप्लाइड का अर्थ है वो, देखो चार संख्या लेते हैं या आठ का लेने में आपको तकलीफ होगी, चार लेते हैं ना, चार को अगर वर्ग लिखेंगे तो चार गुणा चार 16 हो जाएगी, और 4 raised to 4 करेंगे तो चार को चार बार आपस में गुणा करना है, 256 हो जाएगी। हाँ जैसे हमने चार का विरलन किया, चार को ही दे दिया देय करके और आपस में गुणा किया, वो यहाँ करना चाहते, और जब युक्तानंत से अनंतानंत पे चले जाएगी उसको वर्ग करना। कहाँ हुआ
256,
इसका वर्ग का ही अर्थ तो गुणा किया, चार गुणा चार, देखो देखो, ये दो बार हमने ये दो बार लिखा तो 16 आया।
चार बार करेंगे
तो रेस टू 4 आ जाएगा। क्या ये रेस टू है, हम सिंपल हो जाता है ना, उसका घातांक है, उसको हम मराठी में कहना तो उसको घातांक कहते हैं। गुजराती माँ भूल गए कि याद है? हाँ, उनको वो मिला नहीं, पहले भी असंख्यात में ऐसा ही चाहिए था, वो हमने करेक्शन किया था उसको, जगन्य परिता असंख्यात के बारे में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सुनो, ये हम निकाल के आपको बताते हैं, करेक्शन बताएंगे। यही वो निकाल रहे हैं। कितना? 31। हाँ, 41। अच्छा, हाँ देखो, जगन्युक्त संख्यात में वहाँ पर भी ऐसा ही, लास्ट में जो वहाँ ब्रैकेट कर दिया था और उसके आगे लिख दिया था, आगे नहीं, उसके कॉर्नर में ऊपर रखना है, उस वाक्य की लेवल अलग होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट रखो और ब्रैकेट के ऊपर ऐसा जो अभी हमने किया ना वैसा ही करो वहाँ। हाँ, वो आपके और हमारे में अलग अलग छपा है, हमारे में वो और अन्य टाइप से। हाँ, हाँ, हमने तो एक लाइन ही निकाल दी उसकी और अलग से लिखा। हाँ, अभी आते अपने पेज पर। हाँ, आपस में गुणा करना, बार बार, उतनी बार। और वो कैसा है जो अभव्य राशि के सदृश है? ये किसकी बात चल रही है? जघन्य युक्तानंत, यानी अभव्य कितने हैं? जघन्य युक्तानंत प्रमाण है। तो जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण क्या था नितिन भाई, याद है? जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण क्या था? आवली का प्रमाण। और जघन्य युक्तानंत प्रमाण अभव्य राशि है। अर्थात जघन्य युक्तानंत की जितनी संख्या होती है उतनी संख्या प्रमाण अभव्य राशि है, और इसमें से एक घटाने पर उत्कृष्ट परिता अनंत होता है। ये तो आसान है अभी समझने के लिए। तथा जघन्य युक्तानंत का वर्ग करने पर, अब यहाँ एक ही बार आपस में गुणा करना है, लक्ष्मी यहाँ संवर्ग नहीं करना, वर्ग करना बस। जघन्य युक्तानंत मल्टीप्लाइड बाय जघन्य युक्तानंत, तो इसमें हम ब्रैकेट के ऊपर 2 लिख सकते हैं, उसका वर्ग करना है। जघन्य अनंतानंत होता है और इसमें से 1 अंक घटा देने पर उत्कृष्ट युक्तानंत प्राप्त होता है। विशेषार्थ स्पष्ट है। अब मध्यम युक्तानंत, अब इसमें से एक एक बढ़ते हुए सारे भेद हो गए, वो मध्यम युक्तानंत के हो गए। जघन्य युक्तानंत से 1 अंक अधिक और उत्कृष्ट अनंतानंत से, उत्कृष्ट युक्तानंत से 1 अंक हीन करने पर जो प्रमाण प्राप्त होता है वह सब मध्यम युक्तानंत है। वह सब है ना, वहां तक सब, ये सारे मध्यम युक्तानंत है। अब उत्कृष्ट युक्तानंत वैसे ही जो है, फॉर्मूला तो वही है कि जघन्य अनंतानंत में से 1 अंक घटाने पर जो लब्ध प्राप्त होता है वह उत्कृष्ट युक्तानंत है। अब जघन्य अनंतानंत कैसे मिलेगा? तो जघन्य युक्तानंत का वर्ग करने पर जघन्य अनंतानंत प्राप्त होता है। ये पहले ऊपर गाथा में बताया ही था, उसी को यहाँ उन्होंने पॉइंट्स लिखकर एक 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 का डिस्क्रिप्शन अलग अलग कर दिया है। 20 पॉइंट पर मध्यम अनंतानंत जघन्य अनंतानंत से एक अंक अधिक और उत्कृष्ट अनंतानंत से एक अंक हीन तक के सभी विकल्प मध्यम अनंतानंत है तक शब्द डालना चाहिए। हाँ, वो उन्होंने वो तो मध्यम युक्तानंत में भी ऐसा ही करना चाहिए था। एक अंकहीन करने पर जो ऐसे थे ना वहां तक जगन युक्तानंत से एक अंक अधिक और उत्कृष्ट युक्तानंत से एक अंकहीन तक। नहीं नहीं, उन्होंने वाक्य रचना ही अलग बताई ना मोहन, ये अर्थ वही है। हीन करने पर जो प्रमाण प्राप्त होता है वहां तक के सभी विकल्प, ये सब मिलकर उन्होंने मध्यम अनंतानंत एक वचन ही बना दिया। सब विकल्प ऐसा शब्द नहीं डाला है, परंतु ऐसा होना चाहिए वहां तक के सब विकल्प। अब उत्कृष्ट अनंतानंत का स्वरूप बताएंगे। उत्कृष्ट अनंतानंत कुछ मालूम है क्या है?
केवल
ज्ञान केवल दर्शन कहो, एक ही बात है। अब उत्कृष्ट अनंतानंत का स्वरूप हम गाथाओं में पढ़ेंगे 48, 49, 50 और 51। अवरानंतानंतम तिप्पणी राशि करितु विरलादिम तिसलागम च समानीय लद्धे देपक्षिवेदव्वा सिद्धानि गोदसाहिय वनप्रदीपोगलपमानन्तगुणा काललोगागासं छच्छेदेनन्तपक्षेवा तंतिन्निवारवग्गित संवग्गकर्य तत्सदायव्वा दम्मा दम्मा गुरुलघु गुणा विभाग परिच्छेदा लद्धं तिवार वग्गिद संवग्गं करिय केवले नाणे अवणियतं पुनखित्ते तमनंतानंतमुक्तसं। अभी तो त्रिशला का मालूम है ना, वैसे ही इसमें सब डिस्क्रिप्शन आया। संस्कृत पढ़ेंगे और ख्याल आएगा आपको। अवरानंतानंतम तिप्रतिराशिम कृत्वा विरलनादि त्रिशलाकाम च समाप्य लब्धे एते प्रक्षेपत्याः सिद्धानि गोदसाधिक वनस्पति पुद्गल प्रभा अनंत गुणा काललोकाकाशम षट्चैते अनंत प्रक्षेपा तं त्रिवार वर्गित संवर्गम कृत्वा तत्र दातव्या धर्मा धर्मा गुरु लघु गुणा विभाग प्रतिच्छेदा लब्धं त्रिवारं वर्गित संवर्गम कृत्वा केवल ज्ञाने अपनीयतं पुनः क्षिप्ते तमनंतानंतमुत्कृष्टम। अभी वहां पर भी ऐसे शला का तरह स्थापित करना है, पर बेस में किसको लेना? जगन्य अनंतानंत से शुरू करेंगे, तीन राशि बनाएंगे, शला का राशि, विरलन राशि और देह राशि। फिर से अभी हमने असंख्यात में देखा था ना, वैसे ही देखो शलाकात्रय की। अच्छा कल आप नहीं थी, हाँ ठीक है ठीक है। ये शलाकात्रय क्या होता है उसको देखना है। शलाकात्रय लिखने के लिए दो से शुरुआत करते हैं, दो को ही शलाका राशि बनाओ, दो को ही विरलन राशि बनाओ और दो को ही देह राशि बनाओ। तो विरलन राशि को एक एक में स्थापित करेंगे तो दो बार एक एक लिखना पड़ेगा, देह राशि भी दो है तो दो दो लिखे आपस में गुणा किया तो हमारी संख्या चार आ गई। तो ये दो में से एक माइनस किया, शलाका में से एक माइनस किया, क्योंकि एक बार गुणाकार किया तो एक माइनस किया, एक रह गया। अब आगे वाली विरलन राशि बढ़ेगी। अभी चार को ही विरलन करना, चार को ही देय करना, आपस में गुणा किया 256 आ गए। ये दूसरी बार की शला का राशि एक रह गया तो वो भी मिट गया। तो एक बार शला का हुआ, एक बार शला का निष्ठापन हुआ, समाप्त हुआ, शलाका एक बार समाप्त हुआ, इसको शलाका निष्ठापन करते हैं। अब हमारे पास 256 आए, अभी दूसरी बार शलाका स्थापित करना है, तो हमारी शलाका राशि भी 256, विरलन भी 256 का करना है और देय भी 256 करना है। एक बार गुणकार प्रोसेस पूरा होगा तब जो राशि आएगी, कौन सी आएगी, 256 रेस्ट 256, ये जो राशि आएगी तो उसकी दूसरी बार विरलन करना, परंतु ये 256 के बदले 255 हो जाएगी। वो जो विरलन राशि आई उसी को देय करना, फिर आपस में गुणा करना, एक बार गुणाकार हुआ, फिर दो बार हुआ, फिर तीन बार, 254, 253, 252, ऐसे करते करते पूरा जीरो तक आएगा, तब जाके जो अभी हमने तो दो से शुरुआत की थी, तो जो संख्या प्राप्त होगी फिर उसको तीसरी बार शलाका करना, और उसकी शलाका उतना ही विरलन उतना ही देय करना, फिर आगे आगे वो विरलन और देय बढ़ते पड़े चले जाएंगे, महाराशियां होती चली जाएगी। तब जाके जब शलाका समाप्त होगी तो शलाका तीन बार निष्ठापन हुआ यानी समाप्त हुआ, इसको कहते शलाका त्रय का निष्ठापन करना। परंतु हमने तो दो संख्या से शुरुआत की थी, अब संख्या की शुरुआत ही जघन्य अनंत अनंत से करना है। जघन्य अनंत अनंत को जघन्य अनंत अनंत बार लिखो, उसका विरलन किया, उतना ही सबके ऊपर देय दिया, और उतनी ही शलाका राशि हमने स्थापित करके रखी एक बाजू में, एक कोने में। एक बार गुणकार पूरा हो जाएगा जघन्य अनंत अनंत रेस्ट जघन्य अनंत अनंत, तब उसमें से शलाका में से एक माइनस हो गया, जगन्य अनंत अनंत बार वो एक बार शलाका त्रय होगा, एक बार शलाका होगी जो आएगी, फिर उतने प्रमाण शलाका राशि करना, उतने देय करना, उतने विरलन, उतनी शलाका करना। हाँ, दूसरी बार वो जब समाप्त होगी गुना करते 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 करते, फिर उसको शलाका वहां से उरलन दे उतना ही, और हर बार जो एक बार गुणाकार होता है, हाँ, पर विरलन देय की संख्या हर बार बढ़ रही है, हर गुणाकार में बढ़ रही है, इसलिए इसको कहेंगे शलाका त्रय निष्ठापन करना। जो हमने जघन्य युक्ता संख्या के बारे में वहां से भी शुरुआत करके जघन्य परितानंत का स्वरूप लाने के लिए वो बात की थी,
हमने पहले किया था पर तभी इतना क्लियर नहीं,
ये शलाका त्रय हमने समय ज्ञान चंद्रिका जीव कांड में किया है, और वहाँ भी हमने ढूंढारी में इसे भी पढ़ा था, हिंदी में इसे भी पढ़ा था, और क्या है हर बार हमको ऐसा लगता है कि अभी अच्छा समझा, पहले का उसे नहीं समझा था। हाँ, अभी यहाँ तक समझे, अभी वहाँ तो हम जघन्य असंख्याता संख्या से लेकर जघन्य अनंतानंत का पूरा प्रोसेस समझाया था, अब यहाँ कह दिए पूरा प्रोसेस नहीं होने वाला, केवल ज्ञान तक, जो कोई बड़ी बड़ी राशि आ जाएगी ना उसके बाद कहेंगे अब केवल ज्ञान में से माइनस करो और फिर उसी को मिला दो तो केवल ज्ञान आ जाएगा, यानी वो इतना बड़ा है कि उसके साथ कोई ऐसे प्रोपोर्शनेट कोई ऐसा गुणकार भागाकार नहीं कह सकते उसका, यानी हाँ उसका ऐसा नहीं समझा सकते, इतनी बड़ी संख्या हो जाती है। उसको शलाका त्रय निष्ठापन करना, परंतु हर बार की शलाका राशि कितनी बड़ी हो जाती है, और उतनी बार वो संवर्ग करना, केवल आपस में नहीं गुणा करना, वर्ग का संवर्ग कहते हैं उसको, वही राशि जो विरलन वाली दी है वही राशि देय रूप से देना और आपस में उतनी बार गुणा करना, यानी हम अपने कोई साधन से उसका स्वरूप ही नहीं, अभी हमने दो संख्या ली तो भी हमको छोड़ देना पड़ेगा, आगे 2 raised to 256 raised to 256, बस वहीं पर हम रुक गए। आगे नहीं बढ़ सकते है ना। अभी हमने जो पढ़े है ना उसका गाथार्थ देखते हैं, पेज नंबर है 47। जघन्य अनंतानंत रूप राशि का तीन बार पूर्वोक्त प्रकार विरलन देय गुणन, यानी वही राशि विरलन करना, वही देय करना, आपस में गुणा करना, और ऋणादि क्रिया, ऋण करने ने माइनस, यानी शलाका में से एक एक घटाते घटाते जब शलाका राशि समाप्त हो जाती है तो उसको कहेंगे शलाका का निष्ठापन किया, निष्ठापन यानी समाप्त, गुणाकार, गुणादि यानी गुणा, गुणा करना, गुणन गुणन, ऋण यानी माइनस करना। देखो शलाका हमने एक बार गुणा किया, गुणन क्रिया एक बार की तो शलाका में से एक माइनस किया, उसको ऋणादि क्रिया पे क्या करना, विरलन करना, उसी को देय करना, उसी को गुणन करना आपस में, और फिर शलाका में से एक घटाना जिसको हम एक ऋण करना कहेंगे। एक बार गुणन क्रिया होती है तो एक माइनस करना, दोबारा गुणन क्रिया होगी तो दूसरे, और हर बार की विरलन राशि देय राशि बढ़ती चली जाती। अब यही पढ़ेंगे गाथार्थ में, जघन्य अनंतानंत रूप राशि का तीन बार पूर्वोक्त प्रकार विरलन देय गुणन और ऋणादि क्रिया को पुनः पुनः करते हुए, प्रथम शलाका यानी पहली शलाका निष्ठापन यानी समाप्त हो जाएगी, फिर उस प्रमाण विरलन देय और शलाका बनाएंगे, द्वितीय शलाका और तृतीय शलाका को पूर्वोक्त प्रकार से समाप्त करने के बाद, यानी वो तरीका वही है जो हमने असंख्याता संख्यात में देखा था, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार बताया, मध्यम अनंतानंत स्वरूप जो लब्ध प्रमाण प्राप्त हो उसमें। अब यहाँ पर भी छह राशि मिलाना है, वहां पर भी हमने छह राशि मिलाई थी, वहां तो असंख्यात संख्या वाली थी, अब यहाँ अनंत संख्या वाली कुछ राशियां इसमें मिलाएंगे, वो कौन सी है तो देखो, पहला पॉइंट जो संपूर्ण जीव राशि के अनंत वे भाग प्रमाण है ऐसी सिद्ध राशि, फिर दूसरे पॉइंट पर पृथ्वी कायादि चार स्थावर प्रत्येक वनस्पति और त्रस इन तीन राशियों से रहित संसारी राशि प्रमाण, तो क्या बच गया, साधारण वनस्पति रहेगी ना जिसको हम निगोद कहेंगे, ऐसे निगोद जीवों के प्रमाण रूप निगोद राशि जो कि सिद्ध राशि से अनंत गुणी है। पहले में पहले सिद्ध राशि ली है जो जीव राशि के अनंत वे भाग प्रमाण है, अब कहते हैं निगोद राशि जो सिद्ध राशि से अनंत गुणी है। तीसरे पॉइंट पर प्रत्येक वनस्पति सहित निगोद वनस्पति राशि अर्थात संपूर्ण वनस्पति राशि, यानी उसमें वो असंख्यात लोग मिला देना, प्रतिष्ठित भी और अप्रतिष्ठित भी सब आ गए प्रत्येक में, यानी मूल में निगोद राशि अनंत है और उसमें वो असंख्यात लोग दो बार जो हो जाएगी उसके यथा योग्य वो उसमें मिला देना। हाँ पूरे वनस्पति है ना, वनस्पति राशि एक है उसमें साधारण है और प्रत्येक है, साधारण अनंत है, प्रत्येक के दो भाग है प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित असंख्यात लोक है और ये उससे भी असंख्यात गुणे हैं प्रतिष्ठित। हाँ इस टोटल वनस्पति ये अनंत में ये और दो असंख्यात मिला दो उतने हो जाएगी। तो ये तीसरी जो राशि है टोटल वनस्पति राशि लेना है, अनंत है परंतु पहले वाले अनंत से थोड़े असंख्यात ज्यादा है उसमें। चौथी राशि जीव राशि से अनंत गुणी पुद्गल राशि, और पांचवा पॉइंट पुद्गल राशि से अनंतानंत गुणी काल के समय रूप काल राशि, देखो ये तो बात अभी आई नहीं इसके अंदर, पहले हमने पढ़ी है, जब हमने द्विरूप वर्ग धारा देखी है, दो के वर्ग चार से शुरू करते हैं, चार का वर्ग 16, उसका वर्ग 256, ये लाइन आगे चलेगी, बढ़ते 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 चली जाएगी। हाँ नहीं नहीं उसकी बात नहीं कह रही, तो जहाँ वो जीव राशि आती है ना, अब जीव राशि को रखना पहले स्टार्टिंग में, जीव राशि का वर्ग एक बार हुआ, वर्ग का वर्ग, फिर उसका वर्ग, फिर उसका वर्ग, कितने बार, अनंतानंत बार, तब जाके पुद्गल राशि आती है। यानी हम केवल जीव अनंत पुद्गल अनंतानंत कहते हैं, परंतु उसमें वो उसकी अनंतता इतनी है। अब जो पुद्गल राशि आएगी उसको रखो, उसका वर्ग हाँ पहले स्थान पर रखो, या जहाँ रखा है उसके आगे चले जाओ, पुद्गल राशि, उसका वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वो भी अनंतानंत बार करेंगे तो तीन काल के समयों का प्रमाण है। गुणकार नहीं, वर्ग का वर्ग, जीव का एक बार वर्ग किया, वर्ग का वर्ग किया यानी जीव राशि रेस्ट 4, 4 का वर्ग किया यानी जीव राशि रेस्ट 16, ऐसे अनंतानंत बार। तो यानी आगे आगे जब बढ़ते हैं तो कितनी बहुत ज्यादा बार बढ़ते हैं। तो पुद्गल राशि मिला ना, ऐसा ही पुद्गल राशि के वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग करते जाओ अनंत बार, तब जाके तीन काल के समय आते हैं। अब तीन काल के समय की जो राशि है उसके वर्ग, उसका वर्ग, उसका वर्ग, उसका वर्ग अनंत अनंत हो जाएगा, तब जाके आकाश के प्रदेशों की संख्या आ जाएगी। अलोकाकाश राशि लिखा है उन्होंने, पूरा आकाश लेना, पूरा आकाश लेना एक्चुअली, यानी अनंत काल अलोकाकाशम षट चैत्य अनंत, उन्होंने अलोकाकाश कह दिया है, ठीक है। हाँ इसने लोक अलोक पूरा लेना है कि अलोक लेना है, ये संख्या चल रही थी, यहाँ अलोक लिखा है तो अलोक लेना, पर हमने जो वर्ग राशि में आता है तो पूरे आकाश के प्रदेश आते हैं द्विरूप वर्ग धारा में, परंतु यहाँ तो उसके प्रदेश लेना है बस इतना ही, उससे द्विरूप वर्ग धारा से कोई मतलब नहीं है, वो कितना अनंत है वो समझाने के लिए हमने काल की जो संख्या है उससे अनंतानंत वर्ग राशि आगे आकाश के प्रदेश देखे थे। तो अनंत स्वरूप ये छह राशियां क्षेपण कर देना चाहिए, किसमें, जगन्य अनंतानंत को शलाकात्रय निष्ठापन करने के बाद जो मध्यम अनंतानंत राशि आई उसमें ये छह अनंत राशियां मिला देना। छह राशियों को मिलाने के बाद जो लब्ध प्राप्त हो उस महाराशि को तीन बार वर्गित संवर्गित करना, इसको कहते हैं शलाकात्रय स्थापित करना या वर्गित संवर्गित करना। बिल्कुल अभी मध्यम अनंतानंत में ही है, हाँ बहुत नीचे अभी, हाँ तो कहते वर्गित संवर्गित करना है स्वरूप जिसका, ऐसे विरलन देय गुणन और ऋणादि क्रियाओं की पुनरावृत्ति द्वारा शलाकात्रय निष्ठापन कर जो विशद राशि उत्पन्न हो, विशद ये सारे अनंतानंत के भेदों की चर्चा, आगे आगे वाली राशियां है वो बहुत बड़े बड़े अनंत हो रहे हैं उसमें, अभी क्या करना है उसमें वर्गित संवर्ग ने वो इतनी बार लिखना और आपस में गुणा करना, उसी को वर्गित संवर्गित कहते हैं। यानी जो विरलन किया उसी राशि को दे दिया और उसी को आपस में उतनी बार गुणा किया है उसी को वर्गित संवर्गित कहते हैं। हाँ वो शलाका में, हाँ वो शलाका पूरी समाप्त होने तक ऐसे वर्गित संवर्गित करते जाना, शलाका त्रय तीन बार करना। पर एक एक शलाका में कितनी बड़ी अनंत संख्या है, उतनी अनंत बार गुणन करते हैं तो क्या क्या महाराशि होती होगी, यानी उसके तो हम इमेजिनेशन के बाहर की बात है। अब ये जो आएगी ना यहाँ पर राशि, इसका शलाका छह राशि मिलाने के बाद जो राशि आएगी, फिर उसको तीन बार शलाका त्रय करके वर्गित संवर्गित आदि सब कर देना। उसके बाद जो कोई राशि उत्पन्न होगी उसमें अभी उसमें और कुछ मिला देना है। हाँ, क्या क्या मिला देना है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों का प्रमाण मिला देना चाहिए। इतने ज्यादा है, उससे भी ज्यादा पर्याय नाम के ज्ञान में अविभाग प्रतिच्छेद है, उसमें ये बड़ी होगी तभी तो उसमें मिला देना है ना, यानी उसके बराबर क्यों? अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद,
वो दोनों समान थे,
वो समान हो गए परंतु अन्य द्रव्यों के अलग अलग हो गए। परंतु वो भी हर एक द्रव्य के अपने अपने अलग होंगे। अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, गुण उस गुण के, जैसे ज्ञान गुण के अपने अविभाग प्रतिच्छेद अलग है, पर्याय नहीं गुण की बात है, पर्याय में हीनाधिक प्रकट होते हैं, गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की बात। देखो ज्ञान गुण में कितने अविभाग प्रतिच्छेद, फिर पर्याय में प्रकट होता है मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तो गुण की बात है यहाँ पर।
हाँ,
उनका कहना है जो अभी वर्गित संवर्गित किया है उससे भी इसकी संख्या बड़ी होनी चाहिए। हाँ, अगुरु लघु गुण की, हाँ धर्म द्रव्य के नहीं, धर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद और अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद, दो राशि हुई है अभी। एक्चुअली यहाँ पर भी कुछ देखो, लब्धम त्रिवा वर्गी संकृतवा केवल ज्ञानी अपनिया, ऊपर क्या लिखा है, धर्मा धर्मा गुरु लघु गुण अविभाग प्रतिच्छेद, दो ही राशि मिलानी, दो ही राशि मिलानी, क्योंकि मूल गाथा में पढ़ा ना अभी हमने। देखो अनंत तो ये हो गए ना, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अगुरु लोगों को उनके अविभागी प्रतिच्छेदों का प्रमाण अनंतानंत है, उसे मिलाना, बस दो ही राशि मिलाना।
ये अगुरु लोगों के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उससे पर्याय ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है,
ज्यादा है, अनंत गुना है, वो पहली बात आई थी हमने पहले पढ़ा था। देखो यहाँ अभी आएगी, यहाँ कहीं बात आगे, ये अनंत अनंत वर्गस्थान जाने पर पुद्गलों का प्रमाण आता है, हमने देखा था, उससे अनंत अनंत जाने पर तीन काल के समयों का प्रमाण आता है, 231 पेज पर मैं जीवकांड में से पढ़कर बता रही हूँ। उसके अनंत अनंत वर्गस्थान जाने पर आकाश द्रव्य के लंबाई चौड़ाई सभी
प्रदेश के,
श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश आते हैं, श्रेणी रूप, और एक स्थान जाने पर प्रतराकाश हो गए। उसके आगे अनंतानंत स्थान जाने पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण आता है और उससे अनंतानंत वर्ग स्थान जाने पर एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण आता है।
तो जीव के अगुरु लघु के अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है,
बिल्कुल है, और उसके अनंतानंत वर्ग स्थान जाने पर सूक्ष्म ईगोदिया का जो लब्धि अक्षर नामक जघन्य ज्ञान है उसके अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण आता है और उससे अनंतानंत वर्ग स्थान जाने पर असंयत समय दृष्टि तीर्यंच की जो जघन्य सम्यक रूप शायिक लब्धि होती है उसके अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण है। पेज नंबर 231 जीव कांड में अपने मेरी हाँ पहला भाग ये अपने यहाँ जो हुई ना ट्रांसलेट वही उसकी बात ये इसमें भी आने वाली है बात। हाँ ये इसमें आएगी ना बात। हाँ कि अनंतानंद के भेदों के कुछ नाम तो इसमें बताएंगे वो भी आएगी बात। हाँ वहाँ मंगवाते हैं वो कह रहे हैं पूना में यही विषय चल रहा है काने गुरु जी वहाँ से अपनी पुस्तकें मंगवाते हैं ना वो लोग जीवकांड कर्मकांड। अभी कर्मकांड हमारे खलास हो गए इतने दिन जीवकांड नहीं थे तो सब डिमांड इतनी बढ़ रही थी जीवकांड की अभी कर्मकांड इतने सभी पूरा ही सेट मंगवा रहे हैं जीवकांड कर्मकांड लब्धि सार मगर अभी वो समाप्त हुए कितनी तो हमने इंदौर से मंगवाई वो भी खलास हुई।
तो अगुरु लघु गुरु की के अभिभाग प्रतिच्छेद वो छह द्रव्य में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य
के समान है
और उससे आकाश द्रव्य के अभिभाग प्रतिच्छेद
आकाश द्रव्य के अभिभाग प्रतिच्छेद नहीं लिए
आकाश द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अभिभाग
उसके यहाँ बताया नहीं है यहाँ जीव के बताए। हाँ देखो हम कहाँ आए थे दो राशि मिलाई हाँ कौन सी धर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद और अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद उनका प्रमाण मिला देना चाहिए। अब ये मिला देना पर क्या होगा पेज नंबर 48 उपर्युक्त प्रक्षेप के योग से प्रक्षेप यानी जो एडिशन कर दी हमने उसका योग यानी टोटल करने से जो लब्ध राशि प्राप्त हो यानी जो उत्तर आया उसका टोटल जितनी आ गई उसमें ऐड किया तो जो टोटल आ गई उसको पुनः तीन बार वर्गित संवर्गित करे यानी वही शलाका विरलन दे करना एक बार शलाका समाप्त हो जाएगी दूसरी बार वो महाराशि रूप शलाका करना वो समाप्त हो जाएगी तो तीसरी बार करना अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से विरलनादि क्रिया द्वारा शलाका त्रय की समाप्ति कर जो महाराशि रूप लब्ध प्राप्त होगा वह भी केवल ज्ञान के बराबर नहीं होगा। अतः यानी वहां तो जघन्य असंख्यात संख्या से जो करते 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 हम जघन्य परितानंत तक तो पहुंचे थे लास्ट बार जब किया था वर्गित संवर्गित तो कहते यहां अभी भी केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचेंगे। अतः केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों में से उक्त महाराशि घटा देने पर जो लब्ध प्राप्त हो उसको वैसा का वैसा उसी महाराशि में मिला देने पर यानी क्या करना हमारे पास 100 संख्या है और हम ये करते 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 मान लेते हैं कि कुछ 40-60 तक पहुंचे मान लेते ना आगे क्या करना केवल ज्ञान में से 60 माइनस करो 40 रह गए उसमें वही 60 मिला दो इस तरह। तो कहते जो लब्ध हो उसको वैसे का वैसा उसी महाराशि में मिला देने पर केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण स्वरूप उत्कृष्ट अनंतानंत प्राप्त हो जाएगा। सेम है इसलिए उसके बदले के ऐसा भी लिखते हैं। हाँ देखो जगन्य अनंतानंत का किया ना जगन्य अनंतानंत को स्टार्टिंग में लिया तो असंख्यात का तो जगन्य परितानंत का प्रमाण निकालने के लिए लिया था। अभी हम ये असंख्यात संख्या अनंतानंत तक आ गए
शलाकत्र स्टार्ट किया ना करना संख्याओं का, ये शलाकत्र
वहाँ पर
शलाकत्र हुआ टोटल
नहीं, ऐसा टोटल नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो जगन्य परितानंद तक रुके हम, अभी हम जगन्य अनंतानंद तक आ गए और उसके आगे हम केवल ज्ञान तक जा रहे हैं। ये जैसे हमने वहाँ काउंट किया था नवे गुण स्थान में कितने बार होता है, वैसा नहीं है काउंट करना है, वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ हम बीच वाले अनंतानंद में वो शलाकात्र की बात नहीं ले रहे, ये अलग पद्धति से इसको यहाँ बता रहे। तो ये अनंतानंत का जो भेद है जघन्य, उसको हमने तीन बार शलाकात्र निष्ठापन किया, हाँ जो राशि आई उसमें छह राशि अनंत वाली मिला दी, फिर उसका शलाकात्र किया जो सेकंड टाइम, वो जो राशि उसमें ये दो राशि अनंत वाली मिलाई अग्रु लघु वाली,
उसका वापिस
फिर वापिस तीन बार शलाकात्र करना, जो बहुत हाँ तीन बार
शलाकात्र स्थापित
रहेगा,
हाँ परंतु हर बार वो तीन बार कर रहे हैं ना,
हाँ
पहली बार शलाकात्र तीन बार हुआ, तीन बार हुआ, अब उसकी इसकी एडिशन मत करो, हाँ वहाँ का शलाकात्र वहीं पर अनंतानंद तक समाप्त हो गया, अभी यहाँ जो लिया था अनंतानंद से ही शुरुआत की थी, एक बार किया फिर राशि छह मिलाई, फिर दूसरी बार किया फिर दो राशि मिलाई, फिर तीसरी बार किया, और जो संख्या आएगी केवल ज्ञान में से माइनस करो और फिर उसमें वही राशि मिला दो तो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद मिल जाते, अब पर्याय ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद भी उससे इतने अनंत गुणा है, अनंत बार वर्ग करो तो आते हैं, यानी वो कितनी बड़ी अनंत राशि होगी, तो केवल ज्ञान क्या होना चाहिए, यानी उससे अपनी कंपेयर करेंगे तो कितने अनंत अनंत गुणा है, क्योंकि पर्याय से लेकर अक्षर तक जाने तक तो असंख्यात लोग बार अनंत गुणा होता है, पर्याय समास के जो भेद है उसमें षट्स्थान वृद्धि असंख्यात लोग बार होती है, यानी असंख्यात लोग बार अनंत गुणा वृद्धि हुई ना, तब जाके एक अक्षर वाला अक्षर ज्ञान आया, हमारा तो अधिक अक्षर वाले ज्ञान है कि नहीं, हम देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये फिर पढ़ते हैं हम 48 पेज पर पहला पैराग्राफ, उपर्युक्त प्रक्षेप के योग से जो लब्ध राशि प्राप्त हो, क्योंकि हमने छह राशि मिलाई थी ना उसमें और बाद में शलाकात्र करके फिर दो राशि मिलाई थी, उसको पुनः तीन बार वर्गित संवर्गित करे, अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से विरलनादि क्रिया द्वारा शलाकात्र की समाप्ति कर जो महाराशि रूप लब्ध प्राप्त होगा वह भी केवल ज्ञान के बराबर नहीं होगा, अतः केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों में से उक्त महाराशि घटा देने पर जो लब्ध प्राप्त हो उसको वैसे का वैसा उसी महाराशि में मिला देने पर केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण स्वरूप उत्कृष्ट अनंतानंत प्राप्त हो जाएगा। अब इसी का विशेषार्थ बता रहे हैं, तीन गाथाओं का विशेषार्थ गाथार्थ सदृश ही है, गाथा 51 केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या सर्वोत्कृष्ट है, वह संख्या मध्यम अनंतानंत स्वरूप जीव पुद्गल काल और आकाश के प्रदेशों एवं समयों को गुणा करने से अथवा वर्गित संवर्गित करने से भी प्राप्त नहीं होती, अतः उस सर्वोत्कृष्ट संख्या को प्राप्त करने का मात्र एक यही उपाय है, उसमें मध्यम अनंतानंत को घटाकर जो शेष रहे वो उसी मध्यम अनंतानंत में जोड़ देने से उत्कृष्ट अनंतानंत हो जाता है। वो विशेषार्थ पढ़ रही हूँ मैं, हमने यही अभी बताया था जो लास्ट में जो महाराशि आई केवल ज्ञान में से घटा दो और फिर उसमें वही महाराशि मिला दो, उसके लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया है, जैसे 500 में से 100 को घटाने पर 400 शेष रहते हैं, इस 400 को 100 में जोड़ देने से फिर फिर 500 हो जाते हैं। ये केवल ज्ञान को समझाने के लिए ऐसा ही किया। ये जो महाराशि हुई वो भी बहुत छोटी है, तो कहते कि केवल ज्ञान में से घटा दो और फिर उसमें वही मिला दो राशि। नहीं नहीं, वर्गमूल को नहीं निकालना है। यहाँ ये प्रश्न पूछा था, देखो महाप्रमाण है ना, उस प्रमाण को केवल ज्ञान शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह रूप प्रमाण में से घटाना, फिर जो का त्यों मिलाना। तो उसका कारण क्या है कि केवल ज्ञान का प्रमाण ऐसा नहीं है जो पूर्वोक्त प्रमाण के गुणनादि क्रम से जाना जाए, उसमें कोई शलाकात्रे करो वगैरह वगैरह ये प्रमाण उसमें नहीं लगा सकते के। इसलिए बस उसमें मिला माइनस करो, फिर उसी में मिला दो। देखो विशेषार्थ का दूसरा पैराग्राफ, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद सर्वोत्कृष्ट अनंतानंत स्वरूप है, अतः केवल ज्ञान में यह शक्ति है, ऐसे अनंतानंत लोकालोक होते तो भी जान लेता। ये अरविंद भाई को दिखाना चाहिए, ये मेहता सब जगह मिलता है परंतु मानने को तैयार नहीं है। कहीं एक ऐसा बना रहे ना, किसी ने बताया है, हाँ तो थोड़ा पक्ष बना रहता है ना, है कि नहीं, इन्हें शंका है उनको। अभी ये तो द्रव्यानियोग में कहीं नहीं लिखा है ना, कर्णानियोग में हापन तभी तो है ना, यहाँ लिखा है देखो आगे लिखा है, किंतु शक्ति की व्यक्ति उतनी होती जितने की ज्ञेय है। श्री कुंदकुंदाचार्य ने प्रयोजन सार की गाथा नंबर 23 में जो यह कहा है, नानम नेय प्रमाणम अर्थात ज्ञान गेय प्रमाणे, वह केवल ज्ञान की शक्ति की व्यक्ति की अपेक्षा कहा है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञान के अविभक्त प्रतिच्छेदों से अधिक हो, अतः केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या को सर्वोत्कृष्ट अनंतानंत कहा है। संख्या प्रमाण में इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, यानी वो प्रकट शक्ति की व्यक्ति ने वो पर्याय में उतना वो प्रकट है, वैसे उतनी शक्ति प्रकट है, उतना ही व्यक्त हुआ ऐसा नहीं कहना है। पर्याय जो प्रकट हुई है, जैसे हमने कहे सर्वावधि में लगते हैं ना, सर्वावधि ज्ञान में कहाँ तक को जानने की शक्ति प्रकट है, असंख्यात लोग क्षेत्र को कह रहे हैं। तो प्रश्न पूछते हैं, उद्गल तो एक लोक में ही है, असंख्यात लोक तक कहाँ है? अरे वो पुद्गल वहां नहीं है, पर उनकी शक्ति वहां तक जानने की है, होते तो जान लेते वैसे यहाँ। इतनी इतना सामर्थ्य, प्रकट सामर्थ्य है। हाँ, द्रव्य में तो हमने परमाणु तक को ले लिया, और क्षेत्र में असंख्यात लोग तक जानते हैं, अवधि सर्वावधि ज्ञान, और काल में भी असंख्यात लोग काल को भी लिया है, वहां काल को ही नहीं, असंख्यात लोक में जितने प्रदेश है उतने समय करो, वो तो काल भी कितना बड़ा हो जाएगा, नहीं समझे? अरे अंगुल के असंख्यात भाग के प्रदेशों को काल में कन्वर्ट करो तो असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी असर्पणी हो जाती है। तो लोक कितना बड़ा और असंख्यात लोक कितना बड़ा, उसके प्रदेश कितने, उसको समय में कन्वर्ट करो तो कितना बड़ा हो जाएगा, ख्याल में आती है ना बाकी? और केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कहे, ज्ञान गुण के नहीं है, केवल ज्ञान ये पर्याय है, ये पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेदों की बात चल रही है। वो क्या?
तो गुण के अविभाग प्रतिच्छेद
वो सब प्रकट हुए, जितना गुण था उतना पूरा गुण का पूरा विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बाकी अभी
नहीं, पूरा विकास।
तो उसमें अनंतानंत लोकालोक जानने की शक्ति है वहां पर, जैसे बेल में कितने कहां तक ऊपर चढ़ेगी बेल?
जब तक सहारे
सहारे के कारण नहीं, ऐसा नहीं, वो निमित्ताधीन नहीं है, उतने उसमें प्रकट हुआ है, पर शक्ति तो पूरी पड़ी है, गगन तक ले जाओ, आकाश तक। जब तक सहारा है ये सहारा कहने की बात है। अरे वो तो क्या कहेंगे हम, वहीं तक क्यों वहीं तक जाए, अरे ऊपर नहीं था इसलिए। शक्ति है कि नहीं उसमें, शक्ति वैसे ही प्रकट शक्ति है। हाँ वो तो उदाहरण क्या है, बहुत पराधीन जैसा लगता है, इसलिए नहीं मिला इसलिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हाँ ये हो गया अपना। हाँ? अभी आगे 52 नंबर का श्लोक हमको पढ़ना है, गाथा। अथ श्रुत ज्ञानादीनाम विषय स्थानम निरूपयति। इन्हें श्रुत ज्ञानादिकों के विषय रूप स्थानों का निरूपण करते हैं। यही जो पता है ना, श्रुत ज्ञान कितने जानता है और अवधि ज्ञान क्या जानता है, केवल ज्ञान क्या जानता है। हाँ इसमें बताए देखो 52। जावदीयं पच्चखं जुगवं सुदओ हि केवलाण हवे तावदीयं संखेज्यं असंखमणन्तं कमाजाने यावत्कं प्रत्यक्षं युगपत् श्रुतावधि केवलानां भवेत् तावत्कं संखेयम् असंख्यम अनंतम कुमात जानी ही। क्रमात चाहिए ना, कुमात क्या है, क्रमात जानी ही। उसमें क्या लिखा है आपके पास, क्रमात, ये हमारे में कुमात किया है, क्रमात। हाँ वो तो है, क्रमात जानी ही। देखो यहाँ उसका अर्थ देखते हैं। जितने विषय युगपत प्रत्यक्ष श्रुत ज्ञान के है, देखो ये यहाँ नक्की होता है, जितने विषयों को श्रुत ज्ञानी प्रत्यक्ष जानता है ऐसे लिया। जितने विषय युगपत प्रत्यक्ष श्रुत ज्ञान के है, फिर कहना जितने विषय प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान के है, युगपत की बात है, और जितने विषय युगपत केवल ज्ञान के है, उन्हें क्रम से संख्यात असंख्यात और अनंत जानो। यानी श्रुत ज्ञानी असंख्यात ही विषयों को युगपत जान सकता है, अवधि ज्ञान सॉरी संख्यात विषयों को जानेगा, अवधि ज्ञानी असंख्यात को जानेगा, और केवल ज्ञानी अनंतों को जानेगा। ये वो संख्या की बात नहीं है, उतने विषयों को एट ए टाइम जानने वाले की बात है। यहाँ ज्यादा क्लियर हो गया उसको, नहीं तो हमारे वो कंफ्यूजन बना रहे थे ना। अरे वो एक कम को जाना तो एक अधिक तो क्यों नहीं जानेगा। देखो विशेषार्थ, उत्कृष्ट संख्यात नहीं, उत्कृष्ट संख्यात के तक नहीं जाना है, इतने विषयों को एट ए टाइम जानेगा। प्रत्यक्ष वो बात प्रत्यक्ष नहीं है, जिसको हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। इतने विषयों को जाना, अपनी चार उंगलियों को जाना, असंख्यात को एक एट ए टाइम जान लो। ठीक है, यहाँ क्या लिखते देखो।
अरविंद क्या बता रहे, उत्कृष्ट संख्या को नहीं जानते, शुद्ध ज्ञान
नहीं जान सकते।
कैपेसिटी है ना अभी भाई, कैपेसिटी है ना श्रोत ज्ञान में।
देखो पहले यहाँ क्या लिखते हैं वो पढ़ लेते हैं। विशेषार्थ, जितने विषयों को श्रुत ज्ञान युगपत प्रत्यक्ष जानता है उसे संख्यात कहते हैं। जितने विषयों को अवधि ज्ञान युगपत प्रत्यक्ष जानता है उसे असंख्यात कहते हैं, तथा जितने विषयों को केवल ज्ञान युगपत प्रत्यक्ष जानता है उसे अनंत कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार अर्धपुद्गल परिवर्तन भी अनंत है, क्योंकि वह अवधि ज्ञान के विषय से बाहर है, किंतु वह परमार्थ अनंत नहीं है, क्योंकि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल व्यय होते होते अंत को प्राप्त हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। आय के बिना व्यय होते रहने पर भी जिस राशि का अंत न हो वह राशि अक्षय अनंत कहलाती है। यानी मात्र जिसमें से माइनस ही होते जाएंगे, जैसे हम कहें अरे सभी मोक्ष होते चले जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो कहते वो अक्षय अनंत है। अब ये जो हम अभी तक तो हमने संख्यात असंख्यात और अनंतों के भेदों की बात चली, अब यहाँ नया ये जो विषय के बारे में, संख्याओं के बारे में ये नया विषय यहाँ आता है। अतः चतुर्दश धाराणाम नामानि निवेदयति, ये 14 धाराएं अभी बताएंगे, पहले उनके नाम बताएंगे फिर उसका स्वरूप बताएंगे। ये जो संख्याएं हैं सब सारे एक से लेकर केवल ज्ञान तक की, उसके अलग अलग सीक्वेंस के आधार से, जैसे हम मान लेते हैं 1 से 100 तक हम गिनेंगे, केवल ज्ञान को छोड़ो हम 100 तक की बात करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 100 ये एक धारा हो गई, तो उसको हम नाम देंगे हाँ, सर्वधारा, सभी उसमें संख्या आ गई। फिर समधारा, केवल सम संख्याओं को गिनेंगे 2, 4, 6, 8, फिर केवल विषम को गिनेंगे, इस तरह ये सारी धाराएं हैं। अभी हम पढ़ेंगे उसके नाम, 53 नंबर का नंबर की गाथा है। धारेत सौव सम कदि घनमाउ गई दरबे की विंदम तस्स घनाघनमादि अंतम ठाणम च सौवत्थ धारात्र सर्वम समकृति घनमातृकेतरद्विकृति वृंदम तस्य घनाघनमादि अंतम स्थानम च सर्वत्र। देखो संख्यात असंख्यात और अनंत की सिद्धि के लिए निम्नलिखित 14 धाराओं का वर्णन किया जा रहा है। गाथा से यहाँ धाराओं का वर्णन करते हैं। धारेत्थ यानी यहाँ ये धाराएं हैं, कौन सी? सर्वधारा। गाथा में तो केवल सर्व सम कृति घन फिर मातृक फिर इतर ऐसे ऐसे शब्द लिए हैं, और यहाँ हरेक के आगे धारा शब्द लगा के उन्होंने बताया है कि सर्वधारा, समधारा, कृति धारा, घन धारा, कृति मातृक धारा, कृति मातृका कहा है उन्होंने, माऊग मातृक, घन मातृका धारा तथा इनकी प्रतिपक्षी विषम धारा, वहां समधारा था यहाँ विषम धारा लिया, वहां कृति धारा था अकृति धारा, ये सारे के नाम इतर करके उन्होंने बता दिए ऊपर, क्योंकि श्लोक में कितना बताते हैं ना, ऊपर घन धारा कहा यहाँ अघन धारा लिया, वहां कृति मात्र का धारा लिया या अकृति मात्र का धारा लिया, वहां घन मात्र का धारा लिया या अघन मात्र का धारा लिया, फिर द्विरूप वाले 3 धारा है, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा और द्विरूप घनाघन धारा, ये 14 धाराएं हैं। इनके आदि स्थान, अंत स्थान और स्थान भेद धाराओं में सर्वत्र कहते हैं। यानी पहले उन्होंने धाराओं के नाम बताए, वो धारा के स्टार्टिंग कौन सी संख्या है और अंत में कौन सी संख्या है वो बताएंगे, क्योंकि सर्वधारा में तो 1 से लेकर केवल ज्ञान तक हो गए, समधाराओं में पहला स्टार्टिंग 2 होगा अंतिम केवल ज्ञान होगा क्योंकि वो सम संख्या है, विषम धारा में स्टार्टिंग पॉइंट 3 होगा अंत में क्या होगा, केवल ज्ञान माइनस 1 स्टार्टिंग में 3 एक सॉरी 3 नहीं 1 विषम धारा में 1 से शुरू हुआ अंत में
केवल ज्ञान माइनस
केवल ज्ञान माइनस 1 क्योंकि उससे बढ़कर कोई संख्या नहीं होती ना, उसको हमने सम संख्या कह दी, मान लेते 4 है तो 4 की पहली वाली या 100 है तो 100 के पहले वाली 99 हो जाएगी, हम पढ़ेंगे उसको और 100 पर घटित करके आपको दिखाएंगे। तो इन सबके पहला स्थान, लास्ट वाला स्थान और वो स्थान के बीच में कुछ जो भेद अलग अलग पाए जाएंगे उसका भी वर्णन बताएंगे। 54 नंबर, उत्तेव सौवधारा पूर्वम एगा दिगा हवे जजदि शेषा समाधि धारा तत्थुपन्नेति जानाई उक्तैव सर्वधारा पूर्वम एकाधिका भवेत् यदि शेषा समाधि धारा तत्रोत्पन्ना इति जानीहि। सर्वधारा का स्वरूप जिसके पूर्व में एक को आदि देकर, यानी एक से लेकर आदि देकर यानी उस वहां से स्टार्ट होकर सर्व अंक होते हैं उसे सर्वधारा कहते हैं, यानी इसमें सभी अंक सभी प्राप्त हो गए। शेष समाधि 13 धाराएं इस समधारा से नहीं सर्वधारा से चाहिए, सर्वधारा से उत्पन्न जानो। आप में बराबर है, हमारे में गलत। शेष 13 धाराएं, शेष समाधि 13 धाराएं, वहां सम बराबर है, शेष सम आदि 13 धाराएं इस आगे क्या लिखा है
हमारे
हाँ। में वो अश्विन भाई और हमारा गलत है, आगे भी समधारा कहा है वो सर्वधारा से उत्पन्न जानो। विशेषार्थ एक अंकों को आदि लेकर यानी एक से शुरुआत होकर उत्कृष्ट अनंतानंत प्रमाण केवल ज्ञान पर्यंत संख्याओं के जितने स्थान है वे सब सर्वधारामयी है। हम 100 के लेते हैं ना, 1 से 100 तक कितने हैं अंक?
100
है, तो सर्वधारा के टोटल स्थान कितने हैं? 100। ये उनको कहना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 उन्होंने पनट्टी तक लिए सारे, और पनट्टी इस धारा का प्रथम स्थान 1 है। ये 2 बार पनट्टी क्यों लिखा? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 65,536 आगे क्या लिखा है? 35 और 36 अच्छा 35 और 36 ठीक है। इस धारा का प्रथम स्थान 1 है और अंतिम स्थान केवल ज्ञान स्वरूप 65,536 है। यहाँ वहां तक उन्होंने घटित करके दिखाया है, क्योंकि आगे भी जो धाराएं आएगी उसको इतनी बड़ी संख्या में उनको दिखाना आसान रहेगा, इसलिए हाँ तो ये मान लिया 65,536 मानकर आगे की धाराओं का वर्णन चलेगा। तो सम आदि 13 धाराएं इसी सर्वधारा से उत्पन्न हुई है। यहाँ सर्वधारा बरोबर है और सर्वधारा एक शब्द है। नोट, यहाँ अंक संदृष्टि में, अंक संदृष्टि में काल्पनिक संख्या, सर्वत्र उत्कृष्ट अनंतानंत स्वरूप केवल ज्ञान का मान, माने ने उसका प्रमाण 65,536 माना गया है। यानी हम उसको फॉर एग्जाम्पल करके समझाने के लिए इतनी वो संख्या लेकर वहां समझाएंगे। ये तो आसान है ना, अभी तो इसमें कोई शलाका बिलाका कुछ नहीं है, ये आसान है। 14 धारा। अब कहते 55 नंबर, अथ समधाराम आह, यानी अब समधारा का स्वरूप यहाँ बताएंगे। बेयादिभिरुत्तरिया केवल पज्जन्तया समाधारा सौवत्थ अवरम अवरम रूणोक्कसमुक्कसम द्व्यादिद्युत्तरिका केवल पर्यन्तका समाधारा सर्वत्र अवरम अवरम रूपोनोत्कृष्टम उत्कृष्टम। देखो ये समधारा का स्वरूप, इन्हें सभी सम संख्याएं इसमें ले लेना। 2 के अंक से प्रारंभ कर 2-2 की वृद्धि को प्राप्त हुई, क्योंकि 2 के बाद 4 लेना, फिर 6 लेना, फिर 8 लेना, फिर 10 लेना, 12 लेना, तो 2-2 से वृद्धि होते हुए द्व्यादि द्व्य उत्तरिका इसे ना, कहाँ तक? केवल ज्ञान पर्यंत। केवल ज्ञान पर्यंत समधारा होती है। सर्वत्र संख्यात आदि का जो जघन्य स्थान है वही समधारा का जघन्य स्थान है, क्योंकि 2 ये संख्यात का जघन्य स्थान है, समधारा का भी वही है। तो मेरा ये प्रश्न है नितिन भाई, इस धारा में टोटल संख्याएं कितनी होगी? 50 केवल ज्ञान के आधे प्रमाण मैंने पूछा इसमें टोटल कितनी संख्या होगी, इसके कितने स्थान होंगे, ऐसा मेरा प्रश्न
था।
2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हमको काउंट करना है। 10 तक भी हम काउंट करते हैं तो 5 हो गए, तो 10 संख्या उसमें 5 सम संख्या, 5 विषम संख्या होगी। हाँ आधे। तथा संख्यात आदि का जो उत्कृष्ट स्थान है उसमें से एक कम करने पर, ये क्या लिखा, 2 के अंक से प्रारंभ कर 2-2 की वृद्धि प्राप्त हुई केवल ज्ञान पर्यंत समधारा होती है। सर्वत्र संख्यात आदि का जो जघन्य स्थान है वही समधारा का जघन्य स्थान है। तथा संख्यात आदि का जो उत्कृष्ट स्थान है उसमें से रूपों उत्कृष्टम उत्कृष्टम एक कम करने पर समधारा का उत्कृष्ट स्थान बन जाता है।
पर केवल ज्ञान तो समरूप है ना। केवल ज्ञान का जो उत्कृष्ट है वो समरूप है ना।
समरूप है हा?
तो यहाँ पे एक कम करने पर क्यों होता है,
देखो यहाँ ये बात बता रहे हैं यहाँ क्या बताना चाहते हैं, ख्याल में आई बात
नहीं
है, किसके ख्याल में आई,
स्थान यानी भेद बताना।
हाँ कौन सा
उत्कृष्ट संख्या है,
केवल धारा में से एक कम कर सकते हैं, 50% में से
उत्कृष्ट संख्या है वो सब धारा में नहीं है,
ये कहना चाहते हैं। संख्यात आदि का जो उत्कृष्ट स्थान है, संख्यात का उत्कृष्ट स्थान
वो विषम है
क्योंकि जघन्य परितानंत वो समस्थान होगा, जघन्य परिता संख्या तो वो समस्थान होगा। यहाँ क्या लिखा, संख्यात आदि का जो उत्कृष्ट स्थान है
वो विषम नंबर,
उसमें से एक कम करने पर समधारा का उत्कृष्ट स्थान बन जाता है। यानी संख्यात में जो समधारा का उत्कृष्ट स्थान कौन सा होगा, उत्कृष्ट संख्यात में से एक कम,
उत्कृष्ट संख्या विषम रूप है,
उत्कृष्ट संख्या विषम है क्योंकि जगन्य परिता संख्या ये सम संख्या है। देखो ये नीचे विशेषार्थ में देखेंगे हम, इतना ही पढ़ेंगे। देखो 2 के अंक से प्रारंभ होकर 2-2 की वृद्धि को लिए हुए केवल ज्ञान पर्यंत समधारा होती है, यानी हमारी में 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह, वो उन्होंने 65,530 फिर 32 फिर 34 और 65,536, ये तो केवल ज्ञान को लिया था इसलिए 536 लिया। इस समधारा में संख्यात व असंख्यात के जघन्य स्थान तो प्राप्त होते हैं। क्या कहा, 2 संख्या संख्यात का जघन्य है और जो जघन्य असंख्यात का जघन्य स्थान कौन सा है, जघन्य परिता संख्यात, वो भी समधारा में आती है किंतु उत्कृष्ट स्थान प्राप्त नहीं होते। ये बात ख्याल में आई बात, मान लीजिए जघन्य संख्यात 2 और जघन्य असंख्यात 16 है, जघन्य परिता संख्यात 16 है तो उत्कृष्ट संख्यात क्या होगा, 15 और उत्कृष्ट असंख्यात क्या होगा, 200
उत्कृष्ट असंख्यात
255 मान ले ना, हमने 256 को हम अनंत कहेंगे जघन्य।
उत्कृष्ट असंख्यात
उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात वो जघन्य परितानंत से एक कम है, वो भी विषम संख्या है,
वो भी विषम,
ये कहना चाहते हैं। यह ना मान लिया हमने कि जघन्य संख्या 16 है और उत्कृष्ट अनंत 256 है तो उत्कृष्ट असंख्या कितना होगा, 255। यहाँ उन्होंने परिता युक्ता ऐसे भेद नहीं किए हैं। दोनों के जघन्य स्थान सम होने से समधारा में प्राप्त हो जाते हैं किंतु दोनों के उत्कृष्ट स्थान विषम होने से इस धारा में प्राप्त नहीं होते, परंतु केवल ज्ञान वाला जो है वो समधारा में आएगा, उसको विषम धारा में नहीं। संख्यात के भी और असंख्यात के भी उसके समधारा का अंतिम स्थान, उसके लिए संख्यात वाली संख्या में उसको असंख्यात में, हाँ ऊपर लिखा ना। संख्यात आदि का यानी संख्यात असंख्यात का। अब यहीं रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो। नितिन।